अभिमान आशिका को अपने साथ ऑफिस लेकर जाना चाहता था, लेकिन निशा ने उसे मुंह दिखाई की रस्म का बोलकर घर पर ही रोक लिया था। हालांकि अभी भी अभिमान को आशिका को अकेले छोड़ते हुए अजीब लग रहा था, लेकिन आशिका के आश्वासन देने पर वो मान गया था। अभिमान के जाते ही निशा ने आशिका को मुंह दिखाई की रस्म के लिए तैयार किया और फिर आशी को मैसेज कर दिया था। ये आशी और तृप्ति का ही प्लान था। आशी ने जवाब में निशा को आशिका को 20 मिनट बाद नीचे लाने का कहा था। आशिका मैसेज पढ़ते ही निशा ने आशिका की तरफ देखा। आशिका के चेहरे पर हल्की झुंझलाहट के भाव थे, मानो इंतजार करते हुए उसे इरिटेशन फील हो रही हो। निशा ने गहरी सांस ली और फिर आशिका को गौर से देखा कि कहीं कोई कमी तो नहीं है। इसी बहाने वो आशिका को ऊपर रोक सकती थी। क्या हुआ, आपने अभी कहा कि मैं ठीक लग रही हूँ, फिर आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? आशिका ने उनकी नज़रों को नोटिस करते हुए पूछा। सिंदूर, निशा ने उसकी मांग की तरफ इशारा करके कहा। तुमने सिंदूर नहीं लगाया है। इंडिया में मैरिड वुमेन शादी के बाद अपनी मांग में सिंदूर लगाकर रखती हैं, ताकि उनके पति की उम्र लंबी हो और वो उसे उम्र भर प्यार करें। आप भी तो लगाकर रखती हैं, लेकिन आपके पति कहाँ आपसे प्यार, अचानक आशिका के मुँह से निकला, लेकिन उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी जब निशा उसे घूर कर देखने लगी। तुम यहाँ पहले ही किसी को पसंद नहीं हो, ऊपर से ऐसी ही बातें करोगी तो पसंद करना तो दूर की बात है, सब तुमसे नफरत करने लगेंगे, सोच समझकर बोला करो, निशा ने उसे तुरंत डांटा। अगर आशी ने उसे मजबूर नहीं किया होता तो वो कभी आशिका को तैयार करने और किसी तरह की रस्म का हिस्सा बनना पसंद नहीं करती। निशा आशिका को लेकर मंदिर में गई और वहां रखा सिंदूर उसके हाथ में पकड़ा दिया था। आशिका ने हल्का सा सिंदूर अपनी मांग में भरा। उसका चेहरा साफ बता रहा था कि उसे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, 5-10 मिनट इंतजार करो, मैं देख कर आती हूँ कि गेस्ट आ गए हैं क्या, निशा ने बहाना बनाया और फिर आशिका को मंदिर के पास ही छोड़कर दूसरी तरफ आ गई थी। उसे कैसे भी करके 20 मिनट पूरे करने थे। आशिका की बातें अभी भी निशा के दिमाग से नहीं निकली थी। दूसरी तरफ जाते हुए वो गुस्से से बड़बड़ा रही थी। पता नहीं अभिमान को इस लड़की में क्या पसंद आया है, ये उस तृप्ति बजाज की बेटी है, ऊपर से इसकी बातें। मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता तो उसका एक कारण तुम खुद हो, क्या तुम्हें ये नजर नहीं आता जो उसे पहले बहला फुसला रही हो? समझ नहीं आता क्या दिखता है इस लड़की में जो दोनों बाप बेटे इसके पीछे पागल हुए पड़े हैं। निशा को आशिका पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस बीच उसके पास आशिका कॉल आया। उसने राहत की सांस ली, फाइनली अब वो आशिका को सबके बीच लेकर नीचे जा सकती थी। लेकिन आशी ने उसे अभी भी नहीं बताया था कि आखिर उसका प्लान क्या था। उम्मीद है सब अच्छा ही हो, निशा बोली और वो जल्दी से आशिका के पास गई। उसने आशिका से रूखे तरीके से कहा, गेस्ट आ चुके हैं, चलो नीचे चलते हैं। आशिका ने हाँ में सिर हिलाया। आशिका जब निशा के साथ नीचे जा रही थी तब उसने निशा के उतरे हुए चेहरे की तरफ देखा। इसी के साथ उसे एहसास हुआ कि उसने अनजाने में निशा को आकाश की सच्चाई बताकर उसका दिल दुखा दिया था। इससे पहले कि वो मेहमानों के बीच जाते, आशिका ने गहरी सांस लेकर गंभीर आवाज में कहा, मेरा आपका दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था, फिर भी आपको मेरी बात का बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी। हाँ, जानती हूँ मुझे नहीं कहना चाहिए था और मैं गलत थी, लेकिन मेरी बात सच थी। निशा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसका मूड पहले से उखड़ा हुआ था और वो आशिका के साथ किसी तरह की बहस नहीं करना चाहती थी। उसके इस तरह कोई जवाब ना देने पर आशिका को समझ आ गया था कि निशा अब भी उससे नाराज है। जैसे ही निशा आशिका को लेकर नीचे पहुंची तो सिर्फ आशिका ही नहीं, निशा भी हैरान थी। उनके घर का हॉल सजा हुआ था जिसके बारे में निशा को बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मुंह दिखाई की रस्म की काफी तैयारी की गई थी और सामने मुंह दिखाई के लिए बनाए गए सोफे पर आशी लाल रंग के लहंगे और उनके घर के खानदानी हार को पहने बैठी हुई थी। आशी के पास में गौतमी खड़ी हुई थी। शायद इन सब में आशी की मदद गौतमी ने ही की थी और निशा का बस इतना ही रोल था कि वो आशिका को तैयार करके नीचे लेकर आई थी। वहाँ का माहौल देखकर लग रहा था कि उस रस्म को शुरू हुए लगभग 10 मिनट बीत चुके थे और वहाँ आए उनके मेहमान और रिश्तेदार आशी को आशीर्वाद और गिफ्ट दे रहे थे। यही हमारे घर की बहू है, मैंने कहा था ना, अभिमान भले मेरा खुद का बेटा ना हो लेकिन उसके लिए लाखों में एक दुल्हन चुनकर लेकर आऊंगी, गौतमी ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल गौतमी जी, हमें आप पर पूरा यकीन था और जब हमने शादी के कार्ड में सिंघानिया फैमिली और आशी का नाम देखा तभी समझ गए थे कि ये आपकी ही पसंद है, एक औरत ने हंसकर जवाब दिया। हाँ, मुझे भी अभिमान पर बहुत दया आती थी, निशा की तबीयत सही नहीं रहती तो मुझे यही लगा था कि बच्चे की परवरिश और शादी में किसी चीज की कमी ना रह जाए, लेकिन आपने उसकी माँ होने का पूरा फर्ज निभाया है गौतमी जी, दूसरी औरत ने कहा। गौतमी ने मुस्कुराकर उनकी बात पर हामी भरी और आशी के सर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा, हाँ बिल्कुल, अभिमान मेरा खुद का बेटा ही तो है, ऊपर से अब आशी आ गई है तो वो सब संभाल लेगी, अभिमान और आशी के फेरों की रस्म के दिन काफी करीबी रिश्तेदार इकट्ठा हुए थे और जब वे बाहर निकले तब उन्हें यही समझाया गया था कि इस बारे में बाहर भनकना पड़े। ज्यादातर लोगों को अभी भी यही लगता था कि अभिमान की शादी आशी के साथ हुई है और गौतमी ने आशी को सबके सामने अभिमान के दुल्हन के रूप में प्रेजेंट करके इस बात पर मुहर भी लगा दी थी। निशा सकते में खड़ी हुई आशी की तरफ देख रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आशी का ये प्लान होगा। इस बीच उन सबकी नजर निशा और आशिका पर गई। निशा को वे पहले से ही जानते थे लेकिन आशिका उनके लिए नई थी। एक औरत ने आशिका की तरफ इशारा करके पूछा, अच्छा हुआ निशा जी भी आ गई, लेकिन उनके साथ में वो बच्ची कौन है? पहले मैंने उसे यहाँ नहीं देखा। वो निशा की ही रिश्तेदार है, काम मांगने के लिए यहाँ आई थी, मजबूर थी तो हमने रख लिया, गौतमी ने जवाब दिया। उसका जवाब सुनकर आशी के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। बहुत चालाकी से उन्होंने आशिका को उनके यहाँ काम करने वाली साबित कर दिया था। वहीं उनकी ये हरकत देखकर आशिका के चेहरे पर कड़वाहट भरी मुस्कुराहट थी। आशिका ने निशा की तरफ देखा और तंज भरे लहजे में कहा, अगर आपको यही सब करना था तो मेरा क्यों टाइम वेस्ट किया और साथ ही मुझे ऑफिस जाने से क्यों रोका? देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी को भी अपनी बहू माने, लेकिन आप में से कोई भी इस सच को बदल नहीं सकता है कि मैं ही अभिमान की वाइफ हूँ। तुम मुझे गलत समझ रही हो, ये सब मैंने, निशा ने सफाई देने की कोशिश की लेकिन आशिका ने उसे काटते हुए कहा, मैंने कहा ना मिसेज राजवंश, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किया हो या किसी और ने, लेकिन रस्में और ये सब बातें आप ही लेकर मेरे पास आई थी। मेरे लिए मेरा टाइम बहुत कीमती है और साथ ही मेरा काम भी। उम्मीद है आप आगे से ऐसी कोई घटिया हरकत करके मेरा टाइम वेस्ट नहीं करेंगी। आशी ने यही प्लान किया था कि वो सबके सामने आशिका की इंसल्ट करेगी, लेकिन आशिका के चेहरे से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसे इन सब का बुरा लगा है, उल्टा वो तो वहां से जाने लगी। आशी का प्लान उल्टा पड़ रहा था और ये वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो यही चाहती थी कि जो बेइज्जती उस दिन शादी के मंडप में उसने महसूस की थी वही आशिका भी महसूस करे।
आशिका ने अपने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए होंगे कि आशी ने पीछे से तेज आवाज में कहा, कहाँ जा रही हो आशिका, क्या तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं करोगी? आशिका तुरंत आशी की तरफ पलटी और उसके पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, और वो किस बात के लिए? मुझे नहीं पता यहाँ ये सब क्या चल रहा है, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुम इस घर की बहू नहीं हो। आशिका की बात सुनते ही सब हैरानी से आशी की तरफ देखने लगे थे। इससे पहले कि आशिका कुछ और कह पाती, आशी ने निशा की तरफ इशारा किया ताकि वो इस मामले में आगे आकर बोले। इस सब ड्रामे में निशा उनका साथ तो नहीं देना चाहती थी, लेकिन उसने आशी को वादा किया था। वो जल्दी से आशिका के पास आई और उसने कहा, ये तुम क्या बोल रही हो आशिका? नहीं आंटी, इसकी गलती नहीं है, शायद ये अभी भी अपने बचपन के सपने में जी रही है जब इसे ये लगा था कि ये अभिमान से शादी कर पाएगी। हद तो तब हो गई जब ये बिना शादी के अपनी मांग में सिंदूर लगाकर यहाँ आ गई है। कहीं तुमने ये सिंदूर अभिमान के नाम का तो नहीं लगाया है ना? आशी मासूमियत से बोली। सब औरतें आशिका की तरफ अजीब नजरों से देखने लगी थीं। उनमें से एक ने कहा, निशा जी आपको बुरा लगेगा लेकिन इस तरह की लड़कियों को आपके घर पे नहीं लाना चाहिए और ना ही किसी तरह का फेवर करना चाहिए, भले ही वो कितनी भी लाचार और मजबूर क्यों ना हो। हाँ सही कहा, अक्सर इसी तरह की लड़कियां घर तोड़ने के लिए जिम्मेदार होती हैं। आपको अपने बेटे और बहू की शादी बचानी है तो एक सलाह मानिए और इसे घर से निकाल दीजिए, दूसरी औरत ने कहा। उनकी बातें सुनकर आशिका हैरान रह गई थी और सबसे ज्यादा तो उसे निशा पर अफसोस हो रहा था। थोड़ी देर पहले निशा यही साबित करने की कोशिश कर रही थी कि ये सब उसने नहीं किया है, जबकि अब वो आशिका साथ दे रही थी। आशिका को उनसे बहस करने या उनकी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने सिर हिलाया और उन्हें अनसुना करके वहां से जाने को हुई। तभी अभिमान वहां पहुंच गया था। न जाने क्यों उसे निशा की बातें अजीब लगी थी और उसका ऑफिस जाने का मन नहीं हुआ। बीच रास्ते से उसने यू टर्न लिया और वापस घर पहुंच चुका था। उसने आखिरी कुछ बातें और वहां हो रहे तमाशे को देख लिया था। उन सब की बातें सुनकर अभिमान के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। वो आशिका के पास गया। आशिका ने उसे सिर हिलाकर मना कर दिया ताकि वो किसी तरह का तमाशा ना करे, लेकिन अभिमान नहीं रुकने वाला था। सही कहा आंटी आपने, इसी तरह की लड़कियां घर तोड़ने के लिए जिम्मेदार होती हैं, अभिमान बोला और बोलते हुए उसकी नजरें आशी की तरफ थी। आशी उसे देखकर नजरें चुराने लगी थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि अभिमान इस तरह बीच में पहुंच जाएगा। जानकर अच्छा लगा बेटा कि तुम समझदार हो। इससे पहले कि तुम्हारे और बहू के रिश्ते में किसी तरह की दरार आए, तुम्हें इस लड़की को यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए, वहां मौजूद एक औरत ने कहा। बेशक मैं यही करने वाला हूँ और बाहर ही निकालूंगा, वो भी धक्के मारकर, अभिमान ने दांत पीसते हुए कहा और आशी की तरफ बढ़कर उसकी बाँह पकड़ ली थी। उसे अपने पास आकर देखकर आशी घबरा गई थी। उसने जल्दी से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो अभिमान, मुझे छोड़ो तुम। हाँ बेटा, तुम अपनी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? तुम्हें इस लड़की को घर से निकालना चाहिए, उसे समझाते हुए एक बूढ़ी औरत ने कहा। ये मेरी पत्नी नहीं है, जिस लड़की को आप कोई और समझ रहे हैं वो मेरी वाइफ है। अगर कोई बीच में आया है तो ये है और इसे मैं यहाँ से निकाल दूंगा, अभिमान ने डांट पीसते हुए कहा और आशी की तरफ देखा। वो उसे निकालता उससे पहले आशी ने अपना हाथ झटक कर अभिमान के हाथ से अलग कर दिया था। मैं ही तुम्हारी वाइफ हूँ, ये हमारे बीच में आई थी और ज़बरदस्ती आशी बोलने की कोशिश कर रही थी, तभी अभिमान ने तेज़ आवाज़ में उसे उंगली दिखाते हुए कहा, बस यहीं पर चुप हो जाओ और एक शब्द मत कहना। क्या तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम यहाँ किसी की फेक वाइफ बनकर बैठी हुई हो? आई वॉर्न यू आशी, आज के बाद मेरे घर के आसपास नजर आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अभिमान का मूड बुरी तरह उखड़ गया था। वहाँ मौजूद औरतें आपस में फुसफुसाकर बातें करने लगी थीं। उन्हें मामला तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनकी बातों से यही लग रहा था कि वे आशिका को ही कसूरवार समझ रही हैं। आशी को सब सिंघानिया फैमिली की बेटी के तौर पर जानते थे और कार्ड में उसी का नाम लिखा हुआ था। अभिमान ने आशिका की तरफ देखा और उसका हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर ले जाने लगा। उसे अब खुद के फैसले पर अफसोस हो रहा था जब उसने निशा की बात मानकर आशिका को वहां अकेला छोड़ने का सोचा। वहीं आशिका उसके साथ जाने के बजाय वहीं पर रुक गई थी तो अभिमान हैरानी भरी निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा।